नमस्कार भारत, तारीख 26 अगस्त दिन शुक्रवार, आपके साथ मैं अशोक कुमार। अमेरिका और ईरान के बीच समंदर में तनातनी, अमरीकी पोत ने ईरानी पोत की तरफ दागी गोलियां।
At this point, it's not clear what the intentions of the Iranian ships were, but the behavior is not acceptable.
बाढ़ से बेहाल हैं यूपी और बिहार, कितनी मिल रही है मदद?
जब दूरबीन गया तो अब क्या करें, कोई मदद नहीं मिला, कहाँ मदद मिला।
सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए दिक्कत हो गई है टॉयलेट जाने की, कहाँ जाएं, वो परेशान है, बच्चे हैं छोटे, इनको जॉन्डिस हो जाए, ये पानी पीने से कोई दिक्कत हो जाए।
बताएंगे आपको कि पत्नी का शव कंधे पर ढोने को क्यों मजबूर हुआ एक आदिवासी, साथ ही सुनिए वॉशिंगटन डायरी भी, लेकिन सबसे पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, अमर शर्मा से। अमरीकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का कहना है कि एक अमरीकी युद्धपोत ने फारस की खाड़ी में अपनी तरफ बढ़ रहे एक ईरानी युद्धपोत को चेतावनी देने के लिए गोलियां दागी। पेंटागन के प्रवक्ता पीटर कुक ने कहा कि इस हफ्ते में पहले भी कई बार ऐसे वाकये हो चुके हैं जब ईरानी युद्धपोत अमरीकी पोतों की तरफ बढ़े हैं। अमरीका ने कहा है कि ईरान का व्यवहार अस्वीकार्य है और चेतावनी दी है कि ऐसी घटनाओं से तनाव बढ़ सकता है। वहीं ईरानी रक्षा मंत्री जनरल हुसैन देहगान ने कहा है कि जो भी पोत ईरानी जलसीमा में दाखिल होंगे उन्हें गश्त के जरिए चुनौती देने का काम जारी रहेगा। लातिन अमरीकी देश कोलंबिया के राष्ट्रपति खुआन मैनुअल सांतोस ने अपनी सेना को फार्क विद्रोहियों के साथ एक निश्चित संघर्ष विराम लागू करने का आदेश दिया है। 50 साल से भी ज्यादा समय तक चले युद्ध को समाप्त करने के लिए दोनों पक्षों के बीच कल एक समझौता हुआ था। हालांकि सरकार ने विद्रोहियों के शिविरों पर बमबारी को फिलहाल रोक दिया है, लेकिन अंतिम समझौता होने तक सभी सैन्य कार्रवाइयों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। राष्ट्रपति सांतोस ने संसद में संघर्ष विराम लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा,
Quiero informarle a los colombianos que como jefe de Estado y como comandante en jefe,
मैं कोलंबिया के नागरिकों को बताना चाहता हूँ कि राज्य के प्रमुख और सशस्त्र बलों के प्रमुख कमांडर के रूप में मैंने फार्क के साथ निश्चित संघर्ष विराम का आदेश दिया है जो 29 अगस्त सोमवार की रात 12 बजे से लागू होगा, और इसके साथ ही फार्क के साथ सशस्त्र संघर्ष समाप्त हो जाएगा। ये थे राष्ट्रपति जुआन मैनुअल सांतोस के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तुर्की की सरकारी मीडिया के मुताबिक तुर्की की सेना ने उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों पर गोलीबारी शुरू कर दी है। तुर्की का आरोप है कि कुर्द लड़ाकों ने आगे नहीं बढ़ने के समझौते को तोड़ा है। इसी हफ्ते सीरियाई विद्रोहियों ने तुर्की के विशेष सुरक्षा बलों, टैंक और वायुसेना की मदद से उत्तर सीरिया की सीमा पर स्थित जराबलूस शहर को अपने नियंत्रण में लिया है। वहां इस्लामिक स्टेट का कब्जा था। अमेरिका ने कुर्द लड़ाकों और तुर्की के बीच समझौता कराया था जिसके मुताबिक कुर्द लड़ाकों को यूफ्रेटिस नदी के पूरब की ओर लौटना था। तुर्की सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि जब तक कुर्द लड़ाके वापस नहीं लौटते गोलीबारी जारी रहेगी। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में समुद्र तट पर स्थित एक रेस्तरां पर हमला हुआ है। पुलिस के मुताबिक लीडो इलाके में बानादीर बीच क्लब के बाहर एक कार में धमाका हुआ, इसके बाद गोलीबारी भी हुई। खबरें हैं कि हमलावर इमारत के अंदर है, हमलावर कौन है ये अभी साफ नहीं है। इस हमले में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। इस्लामिक कट्टरपंथी समूह अलशबाब मोगादिशु और सोमालिया के अन्य हिस्सों में अक्सर ऐसे हमलों को अंजाम देता रहता है। इसी साल लीडो समुद्र तट पर एक रेस्तरां में अलशबाब के हमले में 17 लोगों की मौत हो गई थी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी की हिंदी सेवा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव, और आपके साथ आज मैं हूं अशोक कुमार। अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले साल जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ तो उम्मीद बंधी थी कि दशकों से एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाने वाले ये दोनों देश अब कुछ करीब आएंगे। फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता। ताज़ा खबर यह है कि फारस की खाड़ी में एक अमरीकी पोत से ईरानी पोत को चेतावनी देने के लिए उसकी तरफ गोलियां दागी गईं, और उसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से अब बयान दागे गए हैं। वजह यह है कि ईरानी पोत अमरीकी पोत की तरफ बढ़ रहे थे, ऐसा अमरीका का कहना है। इस मामले में और क्या कुछ हुआ, सुनिए बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा अमर शर्मा से।
अमरीकी सेना के एक अधिकारी ने बताया कि कल फारस की खाड़ी में ईरान का एक छोटा युद्धपोत दो अमरीकी पोतों के नजदीक पहुंच गया। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक अमरीकी नौसेना के प्रवक्ता कमांडर बिल अर्बन ने कहा कि रेडियो और लाउडस्पीकर से कई बार चेतावनी दिए जाने के बाद भी ईरानी युद्धपोत अमरीकी पोतों के नजदीक आता गया। उन्होंने कहा कि एक वक्त ऐसा आया जब ईरानी पोत अमरीकी जहाज के करीब 200 मीटर नजदीक तक आ गया। इसके बाद अमरीकी तूफानी गश्ती जहाज ने चेतावनी के तौर पर ईरानी युद्धपोत की तरफ 3 गोलियां चलाईं। इसके बाद ईरानी पोत वापस जाने लगे। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जोश अर्नेस्ट ने इस घटना को अस्वीकार्य बताया है। उन्होंने कहा,
At this point, it's not clear what the intentions of the Iranian ships were, but the behavior is not acceptable.
इस समय ये साफ नहीं है कि ईरानी युद्धपोत के इरादे क्या थे, लेकिन ये व्यवहार अस्वीकार्य है जब अमरीकी जहाज अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में था। इस तरह की घटनाएं चिंताजनक हैं और इनसे अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है। वहीं AFP के मुताबिक ईरान के रक्षा मंत्री हुसैन देहगान का कहना है कि समुद्री सीमाओं और फारस की खाड़ी में देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी नौसेना की होती है। जो भी पोत ईरानी जल सीमा में दाखिल होंगे उन्हें गश्त के जरिए चुनौती देने का काम जारी रहेगा। हालांकि अमरीकी नौसेना के प्रवक्ता कमांडर बिल अर्बन ने बताया कि इसी हफ्ते अन्य घटनाओं में 3 ईरानी पोत अमरीकी गश्ती जहाज के करीब 550 मीटर की दूरी से गुजरे थे। ऐसे में जहाजों के आपस में टकराने की संभावनाएं बहुत ज्यादा थी। पेंटागन के प्रवक्ता पीटर कुक ने ईरान के पोतों की तरफ फायरिंग किए जाने को आत्मरक्षा के लिए उठाया गया कदम बताया है। उन्होंने कहा,
These steps are taken in order to make sure that our crew and our ship
ये कदम ये सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाते हैं कि हमारे जहाज और चालक दल अपनी रक्षा कर सकें और ऐसी घटनाओं को ज्यादा गंभीर स्थिति में जाने से रोक सकें। उन्होंने वही किया। ईरानी जहाज उस समय लौट गया, लेकिन इसकी जिम्मेदारी ईरानियों की है कि उन्हें सुरक्षित और पेशेवर तरीके से कार्य करना चाहिए, जैसे दुनिया की बाकी नौसेनाएं करती हैं। जनवरी में ईरानी नौसेना ने 2 अमरीकी गश्ती जहाजों के चालक दल को बंधक बना लिया था। ये अमरीकी गश्ती जहाज भूल से ईरानी जल सीमा में प्रवेश कर गए थे। हालांकि पकड़े गए 10 अमरीकी नाविकों को 24 घंटे के भीतर छोड़ दिया गया था। अमरीका और ईरान के बीच दशकों से राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन पिछले साल ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हुए समझौते के बाद संबंध सुधरने की उम्मीद बंधी थी। समंदर में दिखने वाली इन तनातनी की घटनाओं से साफ है दोनों देशों के संबंधों को सामान्य होने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना होगा।
ये थे अमर शर्मा, सुना रहे थे आपको BBC संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा।
खबर सच है अगर BBC पर है।
और अब रुख करते हैं भारत का। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाके अब भी बाढ़ में डूबे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा के आसपास इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया में बाढ़ ने लोगों का जीना दूभर किया हुआ है। इन्हीं हालात का जायजा लेने के लिए हमारे साथी समीरात्मज मिश्र पहुंचे इलाहाबाद। सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
मध्य इलाहाबाद के भीतरी हिस्से को छोड़ दिया जाए तो 3 तरफ से यहाँ का बाहरी इलाका ऐसा दिख रहा है मानो समुद्र हो। काफी दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। उसके अलावा कुछ दिख रहा है तो पानी में डूबे पेड़, घर या फिर बिजली के ऊंचे खंभे। हालांकि 2 दिन से गंगा और यमुना नदियों के जल स्तर में उस रफ्तार से बढ़ोतरी नहीं हुई जैसी कि पिछले 5-6 दिनों से हो रही थी, लेकिन प्रभावित इलाकों में लोगों की परेशानी में कोई कमी नहीं आई है।
बाहर निकलने के लिए दरवाजे तक पानी भरा था और निकलने के लिए सीढ़ी लगाकर पहले नाव के पास निकलना पड़ता था, उसके बाद नाव में बैठकर सब्जी लाना या कोई भी मार्केटिंग करने के लिए बाहर निकलना पड़ता।
नीचे चूंकि रहते हैं तो नीचे वाला पूरा तल्ला भरा हुआ है, सामान बांध के ऊपर रखना पड़ा है, उसमें दूसरी जगह रह रहे हैं वहाँ से विस्थापित होकर।
मेरे गली में नाव चल रहा है इस समय, कैलाशपुरी में कम से कम 20 घर हैं, पूरे इलाके कम से कम 500 होंगे।
500 घर कम से कम।
मेरा घर गिर गया, दूसरे मकान में है, किराया पे है, गाय भैंस रह के जितना सामान है सब दूसरे के मकान में है, और राशन पानी गृहस्थी सब बिगड़ रही है। और क्या, यहाँ तो 4 लोग रहते हैं हम लोग। अब खाने पीने के यही है कि अब बाजार के खाना है और का लिया लिया है। जब डूबिन गया तो अब क्या करें, कोई मदद नहीं मिला, का मदद मिला।
सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए दिक्कत हो गई है टॉयलेट जाने की, कहाँ जाएँ, वो परेशान है। पीने का पानी, बच्चे हैं छोटे, इनको जॉन्डिस हो जाए, ये पानी पीने से कोई दिक्कत हो जाए, ना पानी में क्लोरीन मिलाया जा रहा है, इस तरह का पानी आ रहा है। इतने पशु मर मर के आ रहे हैं, सुअर गाय उससे बह के आ रहे हैं पानी से, और वो कोई मलबा हटाने के लिए आ नहीं रहा है कि उसको हटाए। अभी भैंस मरी थी यहाँ किनारे, 5 दिन से वो वहीं गंधा रही थी, बदबू आ रही थी, सड़न फैल रही थी।
संगम के आसपास के इलाके से लेकर यमुना पार, करेली, म्योराबाद, सलोरी जैसे इलाके बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। बाढ़ की वजह से ग्रामीण इलाका भी बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है। कई गांव डूबे हुए हैं और सैकड़ों एकड़ फसल नष्ट हो गई है। इलाहाबाद के जिला अधिकारी संजय कुमार कहते हैं कि बाढ़ वाले इलाके से लोगों को ऊपरी स्थानों पर भेज दिया गया है और राहत टीमें अपना काम कर रही हैं।
विलेजेस हो गए हैं जो कि फ्लड के चपेट में आ गए, और उसमें से 675 विलेजेस में है, ऑलमोस्ट 40 विलेजेस हैं विच आर मरूड, 12 तहसील कोराओं और मेजा, वहाँ पे हमारे राहत शिविर, खाना, ड्राई राशन, मेडिकल फैसिलिटीज फॉर डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर, उन सबको हम लोग भिजवा रहे हैं।
वैसे इलाहाबाद में राहत सामग्री बांटने के लिए हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। राहत कार्यों में NDRF, PAC और दूसरे बल लगे हैं, लेकिन लोग ऐसा नहीं मानते और प्रशासनिक मदद से संतुष्ट भी नहीं है।
हमारे यहाँ कुछ मोहल्ले हम लोग मिलकर पूरी सब्जी पैकिंग करके नाव से बांट रहे हैं, अपने स्तर से स्थानीय प्रयास हो रहा है, बाकी कोई प्रयास नहीं रहा।
शासन की तरफ से कोई
प्रयास कुछ नहीं मिल रहा प्रशासन का है, लेकिन हमें फोटो खींच कर अपना रखा नाव पर चढ़ते हुए बांटते हुए। मेरे गली में कोई नहीं आ रहा है, स्थानीय लड़के मोहल्ले के ही लड़के बांट रहे हैं।
स्थानीय स्तर पर ही जो लोगों द्वारा प्रयास है वही प्रयास सार्थक है, प्रशासन द्वारा उस स्तर का प्रयास नहीं जितना होना चाहिए। यहाँ प्रभावित जितने लोग हैं,
प्रशासनिक दावा है कि लोगों को लाने ले जाने के लिए पर्याप्त मात्रा में छोटी छोटी नावों का इंतजाम किया गया है। नावें लगी भी हैं, लेकिन हजारों पीड़ितों की मदद के लिए 2-4 नावें महज ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही हैं। लोगों का कहना है कि नाव के लिए देर तक इंतजार करना पड़ता है। बहरहाल पिछले 2-3 दिनों से बारिश न होने और नदियों के जलस्तर में स्थिरता आने से लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन उन्हें इसके बाद बीमारी और महामारी की चिंता भी सताई जा रही है। समीर आत्मज मिश्र, BBC इलाहाबाद।
और उधर बिहार सरकार का कहना है कि राज्य में 56 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। कोसी, सोन और गंगा के दियारा क्षेत्र के बहुत से जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं। हमारे साथी अमरीश द्विवेदी ने बात की बिहार के आपदा प्रबंधन मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से और पूछा कि क्या उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस तरह बाढ़ आ सकती है, और अगर था तो इसके लिए क्या कुछ उपाय किए गए थे।
नहीं, आपको मैं बताऊं कि तमाम आपदा के मामले में जिला प्रशासन और DM हमारे नोडल पदाधिकारी होते हैं। ठीक है, हम तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार देश का पहला राज्य है जो सेंडे फ्रेमवर्क के आधार पर अपना DRR रोड मैप कैबिनेट से स्वीकृति प्राप्त किया है। इस मामले में 15 साल का ये प्रोजेक्ट है, टारगेट है। 15 साल में हमको ये डिजास्टर रिस्क को रिड्यूस करने का ये प्रोग्राम है और बिहार उसमें सारा काम कर रहा है। लेकिन एक साथ जहां 56 लाख की आबादी प्रभावित हो तो राशि के रहते हुए भी मशीनरी के समुचित प्रबंधन में विलंब हो सकता है, दिक्कत आ सकती है। कोई छू मंतर और जादू छड़ी से कोई ठीक नहीं कर सकता है। लेकिन मैंने आपको ये कहा कि हम सुखाड़ और बाढ़ एक साथ झेल रहे हैं, ये ठीक है कि प्राकृतिक आपदा है, लेकिन ये मेन एक तरह से आयातित आपदा हमारे ऊपर है। भारत सरकार के लोग क्या बैठ के कर रहे हैं, क्या हमारे तबाही का तमाशा, क्या बिहार देश का अंग नहीं है? मैंने ये आरोप लगाया।
लेकिन मंत्री जी, ऐसा ये कोई पहली बार तो है नहीं, ये किन्हीं किन्हीं कारणों से बाढ़ बिहार की हकीकत है, और बाढ़ तो आएगी ही, जब बारिश का मौसम होगा तो बाढ़ आएगी, इसमें कोई इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हर साल, मतलब ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, तैयारी के स्तर पर कमी नहीं रह जाती, आप इस चीज को क्यों नहीं मान रहे?
नहीं नहीं, वो ठीक है। अब मैंने कहा कि 15 साल का DRR जो अभी अप्रूव किया है कैबिनेट ने, वो बिहार देश का पहला राज्य बना। इसका मतलब है कि उस मामले में हमारा एडवांसमेंट किसी भी स्टेट से ज्यादा है। अब रही कि भाई बाढ़ पूर्व तैयारियां जो हम लोग करते, आपको आज से 5 महीना पहले सारे जिला को हमने 1 करोड़ से लेकर के 60 लाख, मतलब जो भी आबादी के हिसाब से सब लोगों को पैसा दिया है। पैसा देने का मतलब सीधा सीधी है कि आप तैयारी जारी रखिए। और हमारे यहाँ खास करके विभाग के स्तर पर में आवंटन में 12 घंटे का विलम्ब नहीं होता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आवंटन मांगती है, हम आवंटन देते हैं। तो तैयारियां नहीं, ऐसी बात नहीं है, तैयारियां थी, लेकिन 56 लाख आबादी का एक साथ प्रभावित हो जाना और उसको कंट्रोल करके, और कम से कम हम रिस्क रिड्यूस हो, कम से कम मन लोग परेशान हो, इसके लिए तो हम प्रयास कर रहे हैं।
और अगर तथ्यों की बात करें तो आपसे जानना चाहूंगा कि अभी राज्य के कितने जिले प्रभावित हैं, कितने लाख लोग प्रभावित हैं, और सरकार ने क्या कुछ, बहुत तथ्यों में बता दीजिए क्या कुछ किया है।
नहीं, सीधी तौर पर मैंने कहा कि लगभग 56 लाख आबादी प्रभावित है और सीधी तौर पर 31 से 32 डिस्ट्रिक्ट हमारा प्रभावित है, जो कभी प्रभावित न रहा, दो तीन जिला ऐसे भी अभी प्रभावित है इस मामले में, बाढ़ के मामले में, और सुखाड़ तो लगभग पूरे बिहार में है। हमारे यहाँ मानसून कम आया, औसत से 14% कम, बारिश कम हुई तो हमारे किसान के खेत में जो फसल लगे थे वो सूख रहे हैं, जमीन में दरार फट रही है, और फिर इधर बाढ़ का मंजर है तबाही, जो दिकोसी का दियारा क्षेत्र हो या फिर सोन का दियारा क्षेत्र हो, कुनकुन का दियारा क्षेत्र हो, ये सोन का दियारा क्षेत्र हो, इस इलाके में तबाही अभी भी है। पानी के जलस्तर में तो कल तक वृद्धि हो रही थी, आज चूंकि मैं मधेपुरा में हूँ, लेटेस्ट जानकारी नहीं लिया हूँ, इसलिए आज के बारे में नहीं कह सकता।
ये थे बिहार के आपदा प्रबंधन मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनसे बात कर रहे थे हमारे साथी अमरेश द्विवेदी। वैसे सियासत से परे पर्यावरणविद बाढ़ जैसे हालात के लिए सभी सरकारों को कटघरे में खड़ा करते हैं। उनका कहना है कि विकास की योजनाएं बनाते वक्त सरकारें पर्यावरण के बारे में नहीं सोचती हैं। हमारे साथी अमरेश द्विवेदी ने ही बात की पर्यावरणविद हिमांशु ठक्कर से।
हमेशा जब बिहार में बाढ़ आती है तो कहा जाता है कि नेपाल से पानी आ गया, वो कोसी से, गंडक से, घाघरा से, महानंदा से, शारदा से, ये सब नदियां जो नेपाल से आती है उससे बाढ़ आती है। लेकिन इस बार ये जो बाढ़ आई तब ये इसमें से एक भी नदी उफान पे नहीं थी। तब ये बाढ़ इसलिए आई क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा बांध है सोन नदी पे, बाण सागर बांध, उस बांध से 19 तारीख को सुबह में वो बांध भर चुका था 96%, और उन्होंने एकाएक 6 लाख क्यूसेक पानी वहां से छोड़ दिया। वो उस समय छोड़ा जब नीचे के इलाके में बहुत बारिश हो रही थी, तो नीचे इलाके में नदी ऑलरेडी जो बारिश हो रही थी उसका पानी आने वाला था, और उसी समय जब ये पानी छोड़ा गया तो ये दोनों के प्रभाव से पटना में पानी का लेवल इतिहास में जितना पानी था उससे ज्यादा बढ़ गया, और जब पटना में बढ़ा तो उसके 2 दिन बाद उसके अपस्ट्रीम में बलिया में यूपी में भी बढ़ गया, और डाउनस्ट्रीम में भागलपुर में भी अनप्रेसिडेंटेड, यानी 4 जगह पे बलिया से लेके भागलपुर तक और अभी आगे जाके कोलगांव तक जा चला गया है पानी, जितना इतिहास में कभी नहीं चढ़ा था उससे ज्यादा चढ़ गया। इसका दूसरा कारण जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बार बार कह रहे हैं कि फरक्का जो गंगा पे नदी बांध बना है उसकी वजह से गंगा में अपस्ट्रीम में एक ड्रेनेज कंजेशन हो गया है, उससे एक जो गाद नदी के साथ आती है वो उससे गंगा में इकट्ठा हुई है, नदी का तल ऊपर चढ़ गया है, उससे गंगा की जो वहन क्षमता है, कैरिंग कैपेसिटी है, वो कम हो गई है। ये दो कारण, यानी दो बांध, एक अपस्ट्रीम का बाण सागर बांध और डाउनस्ट्रीम का फरक्का बांध, ये दोनों बांधों की कंबाइन इंपैक्ट से ये बिहार और यूपी में आज बहुत बड़े पैमाने पे बाढ़ का सामना कर रहा है।
ये बताइए कि हर साल बाढ़ का आना, बारिश खूब होती है, बाढ़ आती है, ये एक प्राकृतिक परिदृश्य है, ये होता है, लेकिन इसके प्रभाव को, इसका जो दुष्प्रभाव है उसको कैसे कम किया जा सकता है?
बिल्कुल आपने सही फरमाया कि एक्चुअली बाढ़ तो आएगी, हमारी जो पर्यावरण की स्थिति है, मॉनसून ड्रिवन जो वाटर इकोनॉमी है उसमें कुछ नदियां में, कुछ क्षेत्र में कुछ समय के लिए बाढ़ तो आएगी, इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा, और बाढ़ का मतलब डिजास्टर नहीं है, ये भी हमें स्वीकार करना होगा। लेकिन यदि हमको इसको डिजास्टर होने से बचाना है तो हमें कुछ चीज करना होगा। सबसे पहले तो हमें, जब हम स्वीकार करते हैं कि बाढ़ तो आएगी, तो हमें फिर उसमें ध्यान रखना होगा कि उस बाढ़ की विभीषिका को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो हम जो भी डेवलपमेंटल इंटरवेंशन करते हैं, हम रोड बनाते हैं, रेलवे लाइन बनाते हैं, शहरीकरण करते हैं, कैनाल्स बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, नदी किनारे कुछ करते हैं इंटरवेंशन, तो ये सब करते समय हमें ध्यान रखना होगा कि हम ये जो परिदृश्य है उसका, जो नदी घाटी है उसका बाढ़ को ड्रेन करने की कैपेसिटी को क्या अफेक्ट इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो हमें ध्यान में रखना होगा, और वो इम्पैक्ट हम कम से कम करें वो ध्यान रखना होगा। ये बात जैसे हिमालय में बात करें तो और ज्यादा ध्यान रखनी होगी क्योंकि वहां तो ऑलरेडी उसकी वल्नरेबिलिटीज ज्यादा है, लैंडस्लाइड्स के लिए, इरोजन के लिए, फ्लैश फ्लड्स के लिए, अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सभी पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ की वल्नरेबिलिटी ज्यादा है, उस संदर्भ में हमें वहाँ और भी ध्यान रखना पड़ेगा।
ये थे पर्यावरणविद हिमांशु ठक्कर।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम, बीबीसी हिंदी।
मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया, कल एक वीडियो क्लिप पूरे दिन चलती रही। ये क्लिप थी ओडिशा के कालाहांडी जिले में रहने वाले दाना माझी की, जो अपनी पत्नी का शव अपने कंधे पर उठाए 10 किलोमीटर पैदल चलते रहे, क्योंकि किराए की गाड़ी कर पाना उनके बस में नहीं था और अस्पताल ने उन्हें एम्बुलेंस दी नहीं। झकझोर देने वाली इस घटना पर ज्यादा जानकारी भुवनेश्वर से सुब्रत कुमार पति दे रहे हैं।
दान माझी की पत्नी अमांग देई को टीवी की इलाज के लिए भवानीपाटना के जिला अस्पताल में दाखिल किया गया था, लेकिन उनकी मंगलवार को मौत हो गई। मृत पत्नी को अपने गांव तक ले जाने के लिए दान माझी को एक एम्बुलेंस की जरूरत थी। उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो खुद गाड़ी किराए पर लेकर ऐसा कर सकते, लेकिन जब उन्होंने अस्पताल के लोगों से एम्बुलेंस की मांग की तो किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे बात को कोई नहीं सुना, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। कहीं से मदद ना मिलता देख दान माझी ने अपनी पत्नी के शव को कंधे पर उठाकर गांव तक ले जाने का फैसला किया। पत्नी के शव को कंधे पर लेकर जब वो 10 किलोमीटर का फासला तय कर चुके थे, तब गांव वालों ने पत्रकार के जरिए ये खबर जिलाधिकारी तक पहुंचाई। उसके बाद उन्हें एम्बुलेंस मुहैया कराई गई। कालाहांडी के कलेक्टर डॉक्टर बृंदा डी ने बीबीसी से कहा कि घटना की जाँच के आदेश दिए गए हैं और अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये पहली बार नहीं जब ऐसी कोई घटना देखने को मिली हो। राजधानी भुवनेश्वर में एक ट्रॉली में और पुरी में साइकिल पर सबको खुलेआम ले जाने जैसी घटनाएं हाल ही में देखने को मिली थी। स्थानीय मानवाधिकार कार्यकर्ता सुदर्शन दास इसके लिए व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराते हैं।
इस सिस्टम का जो मॉनिटरिंग होना चाहिए था वो मॉनिटरिंग नहीं हो पाता है और ये एम्बुलेंस सेवा दिया गया है प्राइवेट पार्टी को, जो प्राइवेट पार्टी के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है। हमारा जो सरकार और हमारा जो विभाग है उसके ऊपर उनका नियंत्रण नहीं है। इसके कारण ठीक समय पे ये एम्बुलेंस सेवा नहीं पहुंच पाता है जहां ये जरूरत है।
इधर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महाप्रयाण नाम की एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत अस्पताल में मरने वालों के परिजनों को सबको घर या श्मशान ले जाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस की सुविधा दी जाएगी। अस्पताल जाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा के ठीक से ना चलने के आरोप लगते रहे हैं। देखना है कि नई महाप्रयाण योजना कितनी सफल होती है। सुब्रत कुमार पति, बीबीसी भुवनेश्वर।
और इसके बाद कार्यक्रम में बारी आ गई है ये जानने की कि आज के समाचार पत्रों में क्या कुछ छपा है। अखबारों के पुलिंदे के साथ अमर शर्मा स्टूडियो में हाजिर हैं। तो अमर, आज के अखबार क्या कह रहे हैं?
जी अशोक, राजनाथ सिंह की कश्मीर, जो उन्होंने कल दौरा किया था कश्मीर में शांति बहाली के ताज़ा प्रयासों के बीच महीने में वो दोबारा कश्मीर दौरे पर गए थे और पिछले 8 जुलाई से वहाँ जो शुरू हुई थी हिंसा जिसमें अब तक 60 लोगों की मौत हो गई, इस खबर को लगभग सभी अखबारों ने आज अपने पहले पन्ने पर छापा है और इसे अपनी पहली खबर बनाया है।
और लगभग सभी अखबारों में मैं देख रहा हूँ एक जैसी तस्वीर छपी है महबूबा मुफ्ती और राजनाथ सिंह की, गृह मंत्री की।
जी, दी हिंदू में इन्होंने जो अपनी हेडलाइन बनाई है कि आवर फ्यूचर लिंक टू J&K, राजनाथ सिंह ने ये वहाँ बयान दिया है,
यानी हमारा भविष्य जम्मू और कश्मीर से जुड़ा हुआ है, ये कहना चाह रहे हैं वो।
और टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसको अपनी पहली खबर बनाया जिसमें वो लिख रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स यूजिंग चिल्ड्रेन टू अटैक फोर्सेज, कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो वहाँ बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
ये महबूबा मुफ्ती ने कहा है जो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री हैं।
जी, इसके बाद एक दूसरी खबर है जो जिस खबर को अभी आपने जिस पर अब रिपोर्ट सुनाई इसको दैनिक भास्कर ने अपने यहाँ फोटो के साथ छापा है कि अस्पताल ने कालाहांडी की खबर कि अस्पताल ने एम्बुलेंस नहीं दी और पत्नी का शव कंधे पर लाद कर 12 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा उन्हें। और एक और खबर है जिसको सभी अखबारों ने बहुत प्रमुखता से छापा है, पहले पन्ने पर इसको जगह दी कि निर्भया दुष्कर्म के दोषी ने खाई नींद की गोलियां और उसने अस्पताल में खुदकुशी की कोशिश की है, गमछे से सेल में लटकने की कोशिश की। मैं आपको ध्यान खींचना चाहूँगा दैनिक जागरण
जी
अखबार ने स्कॉर्पियन पनडुब्बी से जुड़े और दस्तावेज जारी होंगे इस खबर को भी सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है अपने और इस पर।
और लेकिन मैं साथ ही साथ हेडलाइन भी देख रहा हूँ, दैनिक जागरण ने राजनाथ सिंह के बयान को बड़ी प्रमुखता से छापा जिसमें कह रहे हैं कि कश्मीर को हम जहन्नुम नहीं बनने देंगे।
और साथ ही साथ दैनिक जागरण ने नंद घर आनंद भयो इस तस्वीर के साथ
जन्माष्टमी पर रंगारंग तस्वीरें
पहले पन्ने पर इसको जगह दी है
जी।
और राहुल गांधी के बयान को अमर उजाला ने अपने पहले पन्ने पर बॉक्स में छापा है कि आरएसएस के खिलाफ बयान पर उन्होंने कोई यू टर्न नहीं लिया है और उन्होंने जो कहा है वो शब्दशः अपनी बात के साथ अपने हर बात पर कायम, क्योंकि ये खबर तब बनी है जो कल ऐसी खबरें चलने लगी थी कि वो अपने बयान से मुकर गए हैं, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट कर कहा है कि आरएसएस की नफरत फैलाने वाले लोगों और लोगों को बांटने वाले एजेंडे के खिलाफ अपनी लड़ाई नहीं रोकेंगे, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है।
जी, साथ ही साथ ये खबर भी मैं देख रहा हूँ कि दही हांडी पर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उसको ताक पे रखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया, इस बारे में अगले कार्यक्रम में हम आपको एक रिपोर्ट सुनवाने जाएंगे, लोगों की बात भी सुनवाएंगे। और अब बारी वॉशिंगटन डायरीज की। बच्चों को खुद से दूर करना किसी भी माता पिता के लिए मुश्किल होता है, लेकिन पश्चिमी देशों में बच्चे स्कूल या फिर कॉलेज की उम्र तक तो ज़रूर माता पिता का घर छोड़ देते हैं। वॉशिंगटन में बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय एक ऐसे ही पल का गवाह बने, सुनिए उनकी डायरी में।
वॉशिंगटन डीसी में अगस्त की एक ठहरी हुई उदास सी दोपहर। उदास इसलिए क्योंकि यह शहर बहुतों को वैसे भी उदास और बंद गले का कोट सा नजर आता है, खासकर न्यूयॉर्क वालों को, ठीक उसी तरह जैसे मुंबई वाले दिल्ली को बोरिंग और डेड सिटी कहते हैं। और अगस्त में तो डीसी जैसे थम सा जाता है। कांग्रेस छुट्टी पर, ओबामा छुट्टी पर, स्कूल कॉलेज बंद, पैसे वाली जनता दूर दराज के खूबसूरत वादियों में सैर पर, और बिन पैसे वाली जनता 2-3 घंटे की ड्राइव पर पास के समंदर में गोते लगाने निकली होती है। ऐसी एक उदास सी दोपहर को मैं जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के पास से गुजर रहा था। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल या जिन्हें यहाँ डॉर्म्स कहते हैं खामोश नजर आ रहे थे। अभी एक हफ्ते की छुट्टियां और बाकी थीं। नज़र पड़ी एक बड़ी सी गाड़ी पर और उसमें से सामान उतार रहे एक परिवार पर। माँ बाप, एक बेटी उम्र 17-18, एक बेटा उम्र 12-13, एक कुत्ता उम्र पता नहीं, और ढेर सारा सामान। बेटी ने सबसे भारी दिखने वाले सूटकेस को उतारने की कोशिश की। पिता ने उसे पीछे हटाकर सूटकेस उतार दिया, कुछ कहा जो मैं उतनी दूर से सुन नहीं पाया, लेकिन बेटी ने कंधे उचकाए और बेटा हंसने लगा। बेटी देख रही थी कि कोई और तो नहीं देख रहा। यह उसकी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही थी, आज़ाद, माँ बाप से दूर, और यहाँ उसे हर कुछ खुद करना था। परिंदा चिड़िया का घोंसला छोड़ रहा था, अब उसे अपना घोंसला तैयार करना था। गाड़ी से और भी सामान उतारा जाने लगा, एक पुरानी सी साइकिल, एक गिटार, बिस्तर का मैट्रेस, किताबें और न जाने क्या क्या। कुत्ता बार बार बेटी के पास भागना चाहता था, लेकिन माँ ने उसे पकड़ रखा था। मैं थोड़ी देर वहाँ ठहर गया। न जाने कितनी अमरीकी फिल्मों में ये सीन पर्दे पर देख चुका था। पहले भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बाहर अगस्त में इसी तरह का माहौल देख चुका था, लेकिन उस दिन न जाने क्यों वहाँ रुक कर सब कुछ देखता रहा। 15-20 मिनट में सारा सामान अंदर चला गया और मिनटों बाद माँ बाप, बेटा और कुत्ता बाहर आ गए। बेटी साथ नहीं आई। बेटा और कुत्ता गाड़ी के अंदर बैठ गए। माँ बाप गाड़ी के दरवाजे से टेक लगाकर डॉर्म के दरवाजे की तरफ देख रहे थे, और फिर वो बाहर आई। पिता ने हल्के से गले लगाया, माँ ने कस कर भींच लिया। बेटा बस हाथ हिलाकर अपने फ़ोन में लग गया। अमरीकी ज़िंदगी का ये एक बेहद अहम पड़ाव था। कॉलेज जाने का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक नई, अलग, आज़ाद ज़िंदगी की शुरुआत होती है यहाँ। बेटी के फैसले अब उसके होंगे, सलाह मशविरा होगा, लेकिन जिम्मेदारी उसकी होगी। कोई कहता नहीं है, लेकिन ये एक परमानेंट किस्म की गुड बाय होती है, और ये सबको पता होता है। फिलहाल माँ बाप बेटी के खाली कमरे को शायद बार बार देखेंगे, कुत्ता बार बार उस कमरे का चक्कर लगाएगा, लेकिन घर का वो कमरा अब बेटी का नहीं होगा। उसके बचपन के खिलौने वहाँ होंगे, तस्वीरें वहाँ होंगी, गुलाबी चादर और लिहाफ भी होंगे, लेकिन माँ बाप के साथ वो तभी रहेगी जब मजबूरी होगी, और ऐसा अगर हुआ तो समाज की नज़रों में वो लूज़र कहलाएगी, नाकामयाब कहलाएगी। छुट्टियाँ, शादियाँ, क्रिसमस और शायद कोई जन्मदिन, अब यही मौके होंगे जब पूरा परिवार साथ होगा। बेटा शायद अब पहले से कहीं ज़्यादा मैच्योर नज़र आएगा, क्योंकि कुछ दिनों में उसे भी इसी दौर से गुजरना है। सितंबर में पतझड़ का मौसम आएगा, पत्ते पेड़ का साथ छोड़ने को मचलेंगे और फिर हवा के एक झोंके के साथ अलग हो जाएंगे। अमरीकी जिंदगी का एक और चक्र शुरू हो जाएगा। ब्रजेश उपाध्याय, बीबीसी वॉशिंगटन।
और इसके बाद अब बारी कार्यक्रम में मुख्य समाचारों की।
अमरीकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का कहना है कि एक अमरीकी युद्धपोत ने फारस की खाड़ी में अपनी तरफ बढ़ रहे एक ईरानी युद्धपोत को चेतावनी देने के लिए गोलियां दागी। लातिन अमरीकी देश कोलंबिया के राष्ट्रपति खुआन मैनुअल सांतोस ने अपनी सेना को फार्क विद्रोहियों के साथ एक निश्चित संघर्ष विराम लागू करने का आदेश दिया है। तुर्की की सरकारी मीडिया के मुताबिक तुर्की की सेना ने उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों पर गोलीबारी शुरू कर दी है। तुर्की का आरोप है कि कुर्द लड़ाकों ने आगे नहीं बढ़ने के समझौते को तोड़ा है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में समुद्र तट पर स्थित एक रेस्तरां पर बम धमाका हुआ है।
फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली है।
तो इसी के साथ नमस्कार भारत का समय पूरा हुआ। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। आपसे अगली मुलाकात हो रही है ठीक एक घंटे बाद। कार्यक्रम होगा विश्व भारती। अशोक कुमार को अभी अनुमति दें। नमस्कार।